ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 12 पूर्ण समाज चार आध्यात्मिक वर्ग। इस अध्याय के है आज 17 नंबर श्लोक से लेकर 24 नंबर श्लोक तक। बोर्ड में 24 नंबर श्लोक लिखा गया तो पहले श्लोक में स्वयं पढ़ लेता हूं, बाद में साथ में 24 नंबर श्लोक आवृत्ति करेंगे। बान प्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मताम यान अस्थाय मुनि गच्छेत ऋषि लोकम उंजसा। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह मोहरलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। न अकृष्ट पच्चेम अश्नियात अकृष्टम च अपि अकालतः अग्निपक्वम अथ आमं वा अर्कपक्वम अतः आहरेत उत आहरेत। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए, उसे बिना जुती जमीन में उगे उन अन्न को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पक्के न हो। नहीं वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए, दरअसल उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। बनई चरु पुरोडासन निर्वपे काल चोदितान लब्धे नबे नबे अर्ण आदि पुराणम च परित्यजेत। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अर्णों से पुरोडास को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करें। जब उसे थोड़ा सा नया अर्ण प्राप्त हो जाए तो वह अर्ण के पुराने संग्रह को त्याग दे। अग्नि अर्थम एव शरणम उटजम वा आद्री कंदरम सहित हेम वायु अग्नि वर्षार तपसा स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत के कंदर में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात प्रभंजन अग्नि वर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करें। केसर ओम नख शश्रु मलानी जटिल दधत कमंडलो अजिते दंड बलकल अग्नि परिच्छदान। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखें, अपने शरीर के बाल नाखून तथा मुच्छे बढ़ने दें। वह अपने शरीर को शरीर के धूल साफ न करें। वह कमंडलो मृगछाला तथा दंड रखें, पेट की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। चरेत बने द्वादश अब्दान अष्टौवा चतुरह मुनि दौकम वा यथा बुद्धि न विपद्येत कच्चित। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो उठे। यदा अकल्पः स्वक्रियायां व्याधिबीजरयाथवा अनिक्षिक्याम् वा विद्यायां कुर्यात् अनशनादिकम्। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। 24 नंबर श्लोक बोर्ड में। आत्मनि अग्निन समारोप्य शस्त्रस्य अहम् मम आत्मताम् कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातम् तु यथा अर्हतः। आत्मनि अग्निन् समारोप्य सन्नस्य अहम् मम आत्मताम् कारणेषु न्यसत् सम्यक् संघातम् तु यथा अर्हतः। आत्मनि अग्निन् समारोप्य सन्यस्य अहम् मम आत्ममाताम् कारणेषु न्यसत् सम्यक् संघातम् तु यथार्हत। आत्मनि अग्निन् समारोप्य सन्यस्य अहम् मम आत्मताम् कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातम् तु यथार्हत। समारोप्य कोई माताएं? सन्यस्याहं कारणेषु निशेषम्यक् संघातं तु यथार्हतः। शब्दार्थ आत्मनि अपने में ही, अग्नि शरीर के भीतर की अग्नि तत्व को, समारोप्य ठीक से रख कर, सन्यस्य त्याग कर, अहम मिथ्या पहचान, मम मिथ्या धारणा, आत्मताम अपने ही शरीर की, कारणेषु पांच तत्व में जो भौतिक शरीर के कारण है, नियसेत लीन कर दें, सम्यक पूर्णतया, संघातम संजोग या मेल, तू लेकिन, जथा अर्हत जैसा अनुकूल हो। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दें, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता था। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में लीन कर दें। तात्पर्य पांच भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्द में मनुष्य को अच्छी तरह ज्ञान जान लेना चाहिए कि वह शरीर पांच तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा पांच भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है कि भलीभांति यह समझ लेना है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं साअवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 17 नंबर श्लोक से लेकर 24 नंबर श्लोक तक वानप्रस्थ जीवन में कैसे वानप्रस्थ धारण करना तथा किस वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है उसकी चर्चा की जा रही। अगले श्लोकों में भी उसी चर्चा की जाएगी भी, लेकिन वानप्रस्थी क्योंकि चार वर्ण और चार आश्रम इस अध्याय में वर्णन की गई, पूर्ण समाज जिसमें चार वर्ण और चार आश्रम है। तो वानप्रस्थ पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, अंत में संन्यास। तो वानप्रस्थ कैसे है जीवन को धारण करना, वानप्रस्थ यदि वो इस कलियुग में है संभव नहीं, जिस प्रकार यहां पर वर्णन हम देख रहे हैं कि वो कह रहे कि वानप्रस्थी को घर बार छोड़कर कहां चला जाना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए। पर प्रहलाद महाराज भी कहे हिरण्यकशिपु को असुर अवर्ज्य देहिना वनं गच्छन् त्वं हरिं आश्रयेत्, वन में चले जाओ, वन में जाकर हरि को आश्रय करो। अभी वानप्रस्थ का समय हो गया, लेकिन वानप्रस्थ में जंगल में जाकर इसको पेड़ की छाल पहनना चाहिए, वृक्ष की बलकल पहनना चाहिए, नहीं तो मृगछाल को पहनना चाहिए। और यहां तक कि शस्य को खाने का इसका जो कोई उगा माने खेती में जो खेती को चसकर उसमें जो खेत जो अनाज उगाऊगा वो अनाज को वो खाएगा नहीं। जो अपने आप ही उगा हुआ जो वृक्ष तो उसमें भी जो अनाज पूरे पाक जाएगा फिर इसको तोड़कर उसको खाने के उसको अधिकार है। बा जो अग्नि में तापने वाला जैसे कुकिंग करके जो हम खाते हैं आग की सहायता में जो कुकिंग करते हैं उसको भी खाने का उसको अधिकार नहीं है। और वृक्ष में जो अपने आप जो फल पाक कर गिरता है जो सूर्य के उत्ताप में जो पक जाता है तो वो जो अपने आप गिरता फिर उसी को खाने के उसको अधिकार है, किसको, वानप्रस्थी को। और ऐसे ही वर्णन यहां की गई है। और ऐसे ही कठोर वानप्रस्थ धर्म को पालन करने से लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा, कहां जाएगा व्यक्ति वानप्रस्थ धर्म को पालन करके कहां जाएगा, मोहर लोक को जाएगा। पिछले श्लोक में कहा गया ऐसे ही कठोर वानप्रस्थ धर्म को पालन करने से परिणाम स्वरूप वो मोहर लोक को पहुंच सकता है। वानप्रस्थ की विधि विधान का कठोरता से पालन करते हुए वह मोहर लोक नामक उच्च लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। तो इतनी कठोर परिश्रम करेगा, इतने कठोर तपस्या करेगा, लेकिन अंत में वो कहां तक जाएगा, मोहर लोक तक जाएगा। और फिर आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन माम पेतु कौमतेय पुनर्जन्म न दीजिए। तो जीवन के लक्ष्य है कि पुनर्जन्म जैसे जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाना, लेकिन जो वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार करके इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उस व्यक्ति यदि भी सफलता के साथ वानप्रस्थ धर्म को पालन कर लिया तो कहां तक जाएगा, मोहर लोक में जाएगा। तो हमारे लक्ष्य मोहर लोक जाना नहीं है। रामानंद राय को महाप्रभु ने पूछे गौरांग महाप्रभु के सर्वत्यजी जीवेर कहां बास, सबको छोड़कर जीवात्मा कहां जाए, जीव जब संसार के मोह को त्यागेगा त्याग कर फिर कहां जाएगा। सर्वत्यजी जीवेर कहां बास, जय श्री श्री गौर नेता की जय, श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण। तभी रामानंद राय ने कहे कि श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लीला रास, सबको छोड़ के मनुष्य वृंदावन नाम के जंगल में जाएगा, दूसरे जंगल में नहीं, कौन सा जंगल में, वृंदावन जाएगा, वहां जाकर जहां पर नित्य लीला भगवान की नित्य रासलीला अभी भी चल रहा है वहां पर जाकर वो निवास करेगा, वृंदावन में रहेगा। प्रभुपाद ने अपने जीवन में इसी को पालन किया। उन्होंने जब छोड़े घर कहां आ गए, वृंदावन आ गए। वानप्रस्थ का जीवन स्वीकार किए प्रभुपाद ने, वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर राधा दामोदर में रहे। प्रैक्टिकल आचार्य जैसे हमको सिखाए, क्योंकि कलियुग में ऐसा कोई स्थान नहीं कि वानप्रस्थ जाकर रह सकता, कोई जंगल में जाकर कहां रहेगा है, जहां पर उसको पका हुआ फल अपने आप प्राप्त हो, उसको उठा के खाएगा, गंगा जल पिएगा और फल खा के रह सकता है, ऐसा ही कोई स्थान अभी संभव नहीं है। कहीं यदि कोई अपुन का जो जगह सेव का बा और कोई गार्डन है अंगूर का, वो फिर किसी व्यक्ति का है, वहां पर जाके अपने मर्जी से तोड़ के नहीं खा सकता। तो इसलिए वानप्रस्थ जीवन जैसे भागवत में यहां पर वर्णन की जा रही कि जंगल में जाकर एकांत में रहना, इसमें लिखा है कम से कम 12 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल व कम से कम 1 साल रहना चाहिए वानप्रस्थ को जाएगी। कहां? जंगल में अकेले भगवान हरि को आश्रय करके अकेले ही रहना जंगल में जीवन बिताना, संपूर्ण रूप में कृष्ण में भरोसा रखते हुए। लेकिन ऐसे अभी प्रैक्टिकल इस कलयुग में संभव नहीं है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इन्होंने मंदिरों को निर्माण करके ही मंदिरों में व मठ में रहने का व्यवस्था निर्णय किया। इस कलयुग में कोई जंगल में जाके कहां रहेगा, इसलिए प्रभुपाद ने भी स्वयं अपने आचरण के माध्यम से उनको सिखा है कि जब ये घर त्याग कर वानप्रस्थ जीवन में आए तो उन्होंने वृंदावन में आकर रहने लगे, पहले वंशी गोपाल मंदिर में, फिर बाद में राधा दामोदर में रहे। लेकिन फिर भी अपने गुरु के आदेश को त्यागे नहीं, यदि वो वानप्रस्थ के धर्म को पालन करके रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इनके सदगुरु के आदेश था कि अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को छपाना और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करना, उसको नहीं छोड़े थे। वृंदावन में रहते हुए भी वो जाते थे, फिर ट्रेन में बैठकर कहां दिल्ली जाते थे, फिर जाकर प्रयास करते थे किस प्रकार जो किताबों को जो भगवत दर्शन पत्रिका जो उन्होंने स्वयं छुपाते थे उसको फिर स्वयं इसको वितरण करने में लगे रहते थे। इसलिए कलियुग में वानप्रस्थ जीवन को कैसे निभाना, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने इसको स्वयं आचरण करके सिखा है। इसलिए कल जैसे आप श्रवण कर रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे कि गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आप किसी भी आश्रम में वर्ण में रहो, इस कलियुग में भगवान हरि का नाम की कीर्तन करना ही हमारे एकमात्र आश्रय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलियुग में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, तीन बार कहा गया, क्योंकि दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है। इस कलियुग के मनुष्य केवल हरि नाम की जप और संकीर्तन कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ करने का इस युग में संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो वानप्रस्थ के लिए जो कठोर नियम बताया गया, ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यावहारिक जीवन में पालन करना संभव नहीं है। यहां तक कि गौरांग महाप्रभु भी इस प्रकार आचरण को स्वयं इसको नकारा। माधवेन्द्रपुरी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद भारती माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। उन्होंने पुरी में आए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने आए तो वे शेर के चमड़ा पहने हुए थे, व्याघ्र चर्म को पहने हुए थे, भस्म विलेपन था शरीर में, और ऐसे आकर खबर दिए कि बोलो कि माधवेन्द्रपुरी के शिष्य ब्रह्मानंद भारती गौरांग महाप्रभु व चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए पधारे हैं। तो कुछ भक्त लोग जाकर महाप्रभु को खबर दिए, लेकिन महाप्रभु आए और दूर से जब देखे इनको ऐसा ही कि व्याघ्र चमर पहने हुए और शरीर में भस्म विलोपन है, तो वहीं से वापस चले गए, क्योंकि मेरे जो गुरु मेरे गुरुदेव ईश्वरपुरी के जो गड ब्रदर है, माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य है ब्रह्मानंद भारती, वो शरीर में भस्म क्यों विलोपन करेंगे या व्याघ्र चर्म क्यों पहनेंगे? इस व्यक्ति तो कोई दूसरे का आदमी होगा, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, कहकर वापस चले गए। तभी ब्रह्मानंद भारती को पता लगा कि गौरांग महाप्रभु ऐसे ही वेश को अनुमोदन नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर दोबारा उन्होंने स्नान पान करके समुद्र में तो साधारण वस्त्र पहन के तिलक फुलक करके आए, फिर महाप्रभु आके इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। तो इसलिए ऐसे जैसे कहा गया पेड़ की छाल पहनना व मुर्गा चर्म पहनना, ऐसा पहन के हम दाढ़ी और बाल सब छोड़ देना, बता गया दाढ़ी बाल नाखून नहीं काटना, इसको बड़े बड़े होने दे। तो ऐसा यदि अभी कोई रहेगा तो फिर ये प्रैक्टिकल समाज में रहकर ऐसे ही आचरण करना संभव नहीं है, फिर प्रचार नहीं हो सकता, ऐसे आचरण करके कैसे रहेगा प्रसार। चतुर्मास्य में कोई यदि चार महीने छोड़ देता है, नाखून बाल सब छोड़ देता है तो क्या होता है? उसको कई लोग हम इसकन में अनुमोदन नहीं करते हैं, कहते ये क्या है कि प्रभुपाद ने अपने जीवन में भी ऐसा नहीं किया, लंबा लंबा दाढ़ी रखना, बाल रखना, नाखून रखना, जैसे यहां पर कहा गया पूरा उसको काटना नहीं कभी है, उनको बढ़ने दो। तो ऐसा आचरण अभी सभ्य समाज में अनुमोदन नहीं है, विशेष में इसकन में भी अनुमोदन नहीं है। प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज चतुर्मासी व्रत रखे थे, कहा मायापुर में चतुर्मासी व्रत रखे थे, पूरे दाढ़ी बढ़ गया, दाढ़ी नाखून कुट काटते नहीं, पूरे ऐसे थे, तो एक ही टाइम खिचड़ी कुकिंग करके खाते थे, स्वयं कुकिंग करके, क्योंकि ये कहते कि दूसरे का कुकिंग भी नहीं खाना है चतुर्मासी में, स्वयं कुकिंग करके खाना, तो स्वयं कुकिंग करके थोड़ा खिचड़ी बनाकर ऐसे ही खाते थे एक ही टाइम खा के, फिर मुख लगाई खाते थे, डायरेक्ट मुख लगा के जितने खा सकते, हाथ में नहीं खाते हैं चतुर्मासी जो करते हैं, कुकिंग करके ऐसे जमीन में डाल देते फिर मुख लगा के जितने खा सकते बस डायरेक्ट। तो इसे चतुर्मासी करते थे प्रभुपाद ने मायापुर में आए, आकर उन्होंने सबको राधा माधव की महाप्रसाद राजभोग प्रसाद प्रभुपाद जी आस्वादन करते थे, तभी उन्होंने सबको सब भक्त को देखे लेकिन भक्तचारु महाराज को देखे नहीं, बोले भक्ति चारु कहाँ है? नहीं, वो प्रभुपाद चतुर्मासिया कर रहे हैं, वो भी खा मैंने ऐसा ही एक टाइम थोड़ा खिचड़ी खा के स्वयं कुकिंग करके मुख लगा के जितने खा सकते हैं इतने ही खाते हैं डायरेक्ट मुख लगा के, और वो तो अभी दिन रात भजन करते हैं जपा करते हैं। और प्रभुपाद ने कहीं बोला उनको, फिर सब भक्त लोग भक्त एक बार प्रभुपाद आपको मिलना चाहते हैं, आओ प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। अच्छा फिर वो आए प्रभुपाद जी के पास, लेकिन प्रभुपाद राधा माधव प्रसाद खा रहे थे, तो कहे कि प्रसाद लो महाप्रसाद है महाप्रसाद लो, तो कुछ बोले नहीं, प्रभुपाद दोबारा कहे महाप्रसाद राधा माधव महाप्रसाद लो। तीसरी बार प्रभुपाद जब दिखाए फिर तो बड़ी नम्रता से कहे कि प्रभुपाद मैं चतुर्मासिया रखा हूँ, चतुर्मासी प्रभुपाद ने इतनी पूरे तो उनको देखे इतनी थोड़ा गंभीर होकर कहे कि व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय परफॉर्मिंग दिस चतुर्मासी व्रत, आई कैन गिव यू 10,000 टाइम्स मोर बेनिफिट सिंपली पुटिंग माई फीट ऑन योर हेड, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बिकॉज ने, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं जो चतुर्मासी व्रत करते हैं वरना जो वानप्रस्थी रहते इतनी कठोर तपस्या करके उनको कहां तक जाना सक्षम होते हो, मोहर लोक तक जाते हैं, तो फिर हमको मोहर लोक नहीं जाना है, कहां जाना हमको? भगवान के पास जाना है, गोलोक में जाना है। तो इसके लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु ने लेकर आए गोलोक एर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन को गोलोक वृंदावन से लेकर गौरांग महाप्रभु आए, कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। तो महाप्रभु ने स्वयं आकर सिखाया कैसे गोलोक वृंदावन को जाना है, कैसे रिटर्न जाना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है कि जो रामानंद राय उनकी जो चर्चा चलता है বলে তো সবই বনা বা সবই বন্যাশ্রম ধর্ম কো উনি কহে অবশ্য হামকো ইমিটেশন নেই করছে ডাইরেক্ট জম্পিং করকে ভাগনা এ ঠিক নেই লেকিন জেসে মহাপ্রভু রামানন্দ রায় কহ রে চতুর্মাস বন্যাশ্রম ধর্ম মহাপ্রভু নে জব তো কহে কি সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ তব ভি মহাপ্রভু কহে কি ইহ বাহ্য আগে কহ আর কি ভক্তি কা অর্থ ভগবান কি সেবা করনা জব তক আমি সেবা মে জোড়ে নেই তো আর জিতনে ভি তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করনে সে কুছ লাভ নেই হ্যাঁ চার বর্ণাশ্রমী যদি চার বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ না হি ভজে স্বধর্ম আচরিলে সে রৌরবে পড়ি মজে চার বর্ণাশ্রম ভি ঠিক ঠিক সে আপনি বর্ণাশ্রমে রহকর ধর্ম ঠিক ঠিক সে পালন কিয়া হ্যাঁ লেকিন যদি কৃষ্ণ কি ভজন নেই কিয়া ভগবান কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কি ভক্তি নেই কিয়া ফের ও রৌরব নর্ক মে জানে কি অধিকারী বন জাতা হ্যাঁ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নে ওহা তক ভি সর্বধর্মান পড়িতে কহে কি ইয়ে বাহ্য আগে কহ আর অন্ত মে জব ই কহতে রামানন্দ রায় ফের জ্ঞানে প্রয়াসে উদপাস্য নমন্ত ব্রহ্মাদি কী স্তুতি শিব ভাষ কহতে জব উন কহতে কি স্থানে স্থিত শ্রুতি গতাং তরো বাঙ্ক মনোভি স অজিত অজিত হ্যাঁ অপি ত্রিলোক্যাম তো অজিত কু ভি জিত সকতা ব্যক্তি বা ভগবান কু প্রাপ্ত কর সকতা হ্যাঁ যদি ও স্থান মে স্থিত হোকর ভগবান কি ভজন করনে লগতা হ্যাঁ স্থানে স্থিত শ্রুতি গতাং তনো বাঙ্ক মনোভি শরীর সে মন সে বাণী সে যদি ভগবান কি ভজন মে ভক্তি মে লগা হুয়া ব্যক্তি ও কিছু আপনার স্থান মে স্থিত রহে ওই ব্রহ্মচারী হো ব্রহ্মচারী আশ্রম মে রহকর ভি ভগবান কি ভক্তি কর সকতা হ্যাঁ গৃহস্থ হে গৃহস্থ আশ্রম মে রহকর কি ভগবান কি ভক্তি কর সকতা বা কই বানপ্রস্থী বানপ্রস্থ আশ্রম মে রহকর ভগবান কি ভক্তি কর সকতা সন্ন্যাসী ভি ভক্তি কর সকতা তো ইসলিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা কে আধার পর কই আশ্রম কে চেঞ্জ করলে সে কই বড়া বনতা হ্যাঁ ভক্তি মে আগে বড় যাতা এসা নেই কই ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হ্যাঁ তো ভক্তি মে আনে কে পহলে আশ্রম কু বদলনে কা কই কুছ সবাল রহতা লেকিন যদি ভক্তি মে আনে কে সময় মে ও ব্রহ্মচারী হ্যাঁ তো ফের ইসকু আগলে আগা আশ্রম আগলে আশ্রম স্বীকার করলে আবশ্যকতা নেই ভক্তি কাজ মুখ্য আশয় হ্যাঁ ভগবান কি ভজন করনা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 তো ব্রহ্মচারী কেবল বস নবধা ভক্তি কু আশ্রয় করকে হি উসি ব্রহ্মচারী আশ্রমে রহকর আপনি জীবন কু সফল বনা সকতা ভগবত ধাম কু প্রাপ্ত কর সকতা হিসু আগলা আশ্রম গ্রহণ করলে সে ও মহান বন যায় এসা নেই কি ভক্তি মে আগে বড় যায় এসা নেই স্থানে স্থিত্ব জি স্থান মে রহ উসি স্থান মে রহো লেকিন ভগবান কি ভক্তি করনা এ মুখ্য আশয় হ্যাঁ ব্রহ্মচারী কু ব্রহ্মচারী আশ্রম মে রহকর হ্যাঁ ভজন করলে সে ভগবান প্রাপ্ত কর সকতা যদি ভক্তি মে আনে কে পহলে কই গৃহস্থ আশ্রম মে থা আর অভি দীক্ষা লেকর ফের ভক্তি মে প্রারম্ভ কিয়া তো ওই গৃহস্থ আশ্রম মে রহকর ভগবান কু প্রাপ্ত কর সকতা হ্যাঁ ভগবান কি ভক্তি করকে কই বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী সভি কি কর্তব্য হে কি ভগবান কি ভক্তি করনা তনো বাঙ্ক মনোবি শরীর সে মন সে বাণী সে সম্পূর্ণ রূপে ভগবান কে চরণ মে সমর্পিত হোকর গুরু কে নির্দেশন মে ভগবান কি সেবা করনা এই সভি কে কর্তব্য হ্যাঁ চাহে ও কিসি বর্ণাশ্রম মে রহে নেই তো এই চৈতন্য মহাপ্রভু কে শিক্ষা কি জহাঁ পর রহতে ওই রহো লেকিন ভগবান ভক্তি মে লগে রহো হ্যাঁ ভগবান গুরু কে নির্দেশন মে আপকো যো সেবা প্রাপ্ত হতা উসি মে লগে রহো যদি গুরু চাহতা আপকো কই আশ্রম চেঞ্জ করনা তবে আপ চেঞ্জ করছে নেই তো কই আবশ্যকতা নেই উসি বর্ণ আশ্রম যিসি বর্ণ আশ্রম মে রহকর ভক্তি কি যা সকতি এসে বর্ণাশ্রম ধর্ম মে বানপ্রস্থ ক্ষেত্রীয় কে লিয়ে হ্যাঁ ক্ষেত্রীয় সন্ন্যাসী নেই ব্রাহ্মণ বাত মে বানপ্রস্থ ফের সন্ন্যাস লেতা হ্যাঁ লেকিন ক্ষেত্রীয় কে লিয়ে বানপ্রস্থ তক কহা গিয়া বৈশ্যো কে লিয়ে অপশনাল বানপ্রস্থ অপশনাল হ্যাঁ ও গৃহস্থ মে রহতা লেকিন বানপ্রস্থ কবি কবি বৈশ্য বানপ্রস্থ লে সকতা লেকিন ক্ষেত্রীয় কে লিয়ে বানপ্রস্থ হয় বিশেষ রূপে ক্ষেত্রীয় রাজা জব রিটায়ার কর লেতে থে আপনি শাসন কার্য মা যো আপনি সেবা সে রাজা কিসে পদ কু ছোড় যাতে থে জঙ্গল চলে যাতে থে জেসে কই ভাগবত মে সারে উদাহরণ দিয়ে গিয়ে কই রাজা মহারাজা বস वानप्रस्थ लेकर जंगल में चले जाते थे। वो सन्यास लेने का कोई दृष्टांत नहीं, केवल महाराज ने ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव केला कोई ऐसे दृष्टांत नहीं कि कोई सन्यास लिया है। जब भी भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, युधिष्ठिर महाराज भी पांडवों के साथ वानप्रस्थ लेकर घर से निकल गए। उसी प्रकार अन्य जित्र कई राजाओं की उदाहरण प्रस्तुत की गई। ये राजा सारे जैसे प्राचीन भविष्य को नारद जी ने प्रीचिंग किया, फिर उन्होंने वानप्रस्थ लेकर घर छोड़ के गए। जितने भी सारे उदाहरण सब वानप्रस्थ लेकर, क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ, क्षत्रियो राजा के लिए विशेष रूप में वानप्रस्थ आश्रम तक अनुमोदन की गई है, वो वानप्रस्थ लेकर जाते हैं। और वैश्यों के लिए कहा कि वो गृहस्थ में रहेंगे, कभी कभी विशेष संयोग से ऑप्शनल उनके लिए वानप्रस्थ ले सकता है वैश्य। ये तीनों द्विजय हैं, ये दोनों का तीनों को द्विजय कहा जाता, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको गायत्री जपने का अधिकार है। शूद्र सदा शास्त्र में कहते कि शूद्र सदा गृहस्थ में रहेगा, शूद्र को कभी नहीं कहा गया वानप्रस्थ लेना या संन्यास लेना, शूद्र को सदा है सदा गृहस्थ में रहना। और कलि युग में कलौ शूद्र संभव, प्राय सब जन्म से शूद्र है, तो इसलिए सदा ही गृहस्थ में ही रहेंगे, इसमें कोई है कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन किसी ने किसी कारण से यदि सदगुरु की प्राप्ति किया तो फिर सदगुरु के माध्यम से इसको संस्कार प्राप्त होता है, है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजो उच्यते, वेद पठेत भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जैसे इस भाष्य कहते हैं ब्राह्मण, तो इसलिए ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है, नहीं तो जब अपने चेतना को आगे नहीं उठाया, शूद्र के स्तर पर सदा रहा तो उसको सदा गृहस्थ में रहने के लिए अनुमोदन किया गया। लेकिन भगवान क्या शूद्र को भगवान को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो भगवान प्राप्त कर सकता, मांग ही पार्थ व्यपाशित्य स्ते अपिशु पाप जनय स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र ते पी जानती पराम गति, वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कलयुग में जो मुख्य आशय है युगधर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस युग में कोई भी हरिनाम का जप और कीर्तन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, यदि वो चारों नियम बाय रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हरिनाम के साथ जप और कीर्तन करता है, उतने ही पर्याप्त है इसको भगवत धाम पहुंचाने में। इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी कह रहा कि सारे समाज यदि ऐसे शूद्र रहेंगे तो कल्याण कैसे होगा? शूद्र प्रचार नहीं करता है, शूद्र सिर्फ अपने इंद्रिय तत्व में लगा रहता है, तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों को जरूरत है जिनको जिन्होंने समाज की मस्तिष्क के कार्य करके ही सर्वत्र प्रचार करेंगे, जो धर्म हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करेंगे, तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस्कन सोसाइटी को बनाया, इसकी एक भी लक्ष्य है कि कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना जो प्रचार में जीवन को समर्पित करेंगे। इसलिए जो ब्राह्मण बनेगा तो उसको संन्यास लेना कहा गया, उसको संन्यास वो ले सकता है, गुरु निर्देशन में संन्यास स्वीकार कर सकता, नहीं तो जन्म से पाए प्राय सुख शूद्र केवल हरिनाम संकीर्तन को आश्रय करके स्त्री वैश्य शूद्र सभी उद्धार हो सकते हैं। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम विशेष रूप में क्षत्रियों के लिए, जिसके पास क्षत्रिय के गुण व क्षत्रिय राजाओं के लिए प्राचीन काल में अनुमोदन की जाती थी वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करना। अब वानप्रस्थ में जाकर जंगल में, उस समय जंगल सर्वत्र जंगल था और फल मूल सब कुछ मौजूद था, कहाँ जंगल में जाकर जंगल से फल अपने आप पर्याप्त फल प्राप्त होते थे, फल जो अपने तोड़कर खाना है, इनको आग में पका हुआ चीज नहीं खाने वानप्रस्थी को खाने मना है, अपने जो सूर्य के आलोक से जो पकता हुआ जो फल उसी को केवल खाकर गंगा जल पीकर पवित्र जल और फल खा के रह सकते हैं, ऐसा इसको जीवन धारण करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसे संभव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं आचरण करके सिखाया कि वानप्रस्थ जीवन लेना है तो कहाँ आना। महाप्रभु ने कहा जैसे सर्वत्यजी जीवेर कहाँ वास, श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लीला रास, वृंदावन धाम में आकर आश्रय लेना, वहां पर आकर भगवान हरि की स्मरण करना है, वहां भगवान भजन करना। तो इसलिए लेकिन आज भी वृंदावन धाम में भी क्या हो गया, प्रभुपाद जी के समय में भी जो वृंदावन धाम था जो प्रभुपाद जी पधारे थे, अभी उस समय के वृंदावन और अभी वृंदावन में क्या अंतर है? अभी वृंदावन भी आस्ते आस्ते वृंदावन में आस्ते आस्ते बॉम्बे की नगरी बनने वाला है। अब सुभाष महाराज आएंगे कहेंगे देखो ये तो पहले हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के सामने कुछ नहीं था, हम भी जो भक्त बने तो कुछ नहीं था उधर पूरे खाली था, अब एक बोलते ये तो कर्नाट प्लेस बन गया तो इस प्रकार वृंदावन में तो आज भी स्काई स्कॉपर बिल्डिंग से बन रहा है, कोई भी आता जब फ्लैट खरीद लिया ठीक है बानप्रस्थ बोले वृंदावन में रहेगी भजन करना है, अब फ्लैट खरीद के रहेगा लेकिन वहां तो बैठा रहेगा फ्लैट में। लेकिन आजकल एक माया का भी इन्वेंट हो गया क्या, मोबाइल, वहां बैठ के बस वहां बैठ के वृंदावन में तो रहेगा अपना फ्लैट में बैठेगा लेकिन उसमें से कम दो चार घंटा खर्च वो व्यतीत करता होगा कहां से, खबर लेने के लिए घर में क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, बेटा सब ठीक चल रहा है ना, ये करना बस बातचीत करेगा है? उसी में चलाएगा तो वो कैसे वानप्रस्थ रहेगा वो है? वानप्रस्थ जीवन का अर्थ संसार से मति को हटाकर आस्ते आस्ते आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ना। जैसे श्लोक कह रहा है कि कम से कम जानना चाहिए कि शरीर जो पांच भूत से बनाया हुआ है, इसलिए अंत में ही पांच भूत वाले शरीर पांच भूत में ही मिल जाएंगे, इसलिए उसको अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। वानप्रस्थ जीवन का ये उद्देश्य है कि वैसे आस्ते आस्ते इसको जो थियोरेटिकली जानता है इसको व्यावहारिक जीवन में भी अनुभव करना, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। ये अनुभव जब होगा तो फिर इसको फिर वो ठीक ठीक से भगवान के भजन में संपूर्ण रूप से समर्पित हो सकता, उद्देश्य ये है। लेकिन हम कहां से शरीर को, तो वहां पर बैठने पर भी फिर हम सद्य संसार के चिंतन करते रहेंगे तो हमको कहां से अनुभव होगा, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये कहां से अनुभव होगा है? इसलिए जब प्रकृति में व्यावहारिक है प्रभुपाद जी ने आचरण करके सिखाए और हमें सदा कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए, गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा में जो लगा रहेंगे उसी के माध्यम से हम इंद्रिय तृप्ति की भावना से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। यदि एक केवल जीवन के लक्ष्य बनाए कि गुरु के निर्देशन को ही जीवन में उतारना है जीवन का लक्ष्य और सब छोड़ देते, इसलिए डेली गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर न करिह मने आशा। हमारे इस्कन में मंगला आरती हम गाते हैं, मंगला आरती भगवान की आरती हो रहा है लेकिन हम गुरु वंदना गुरु अष्टक पढ़ते हैं, गुरु अष्टक है गौड़ीय मठ में नहीं करते, ये गौड़ीय मठ में अपना भजन माने वो भाले गौरा चांदेर निशी पुहाइल कई भजन है वो गाते हैं, भगवान की भजन गाते हैं। बाप में जैसे हम शिक्षाष्टक गाते तो ऐसे ही गुरु वंदना वहां गुरु अष्टक गा लेते बस, लेकिन आरती के समय में राधा कृष्ण उनके मंदिर में आरती होता तो वो राधा कृष्ण की स्तुति गाते हैं, मंगला आरती गाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम क्यों दिया हमको, ये प्रभुपाद जी जानते हैं कि प्रकृति में रहस्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करने की असली रहस्य क्या है, हैं? जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य अप्रसादान नगति कुतोपी, इसी को स्मरण रखने के लिए है त्रिसंध्या में तीनों संध्या में कि गुरु की सेवा करके ही गुरु को प्रसन्न करने से ही कृष्ण प्रसन्न होंगे और कोई दूसरे उपाय नहीं है, कोई बद्ध जीव डायरेक्ट जंपिंग करके कृष्ण के पास में नहीं जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद सिस्टम रखा हमको सिखाने के लिए। गुरु वंदना पहले गुरु अष्टक गाओ फिर थोड़ा जप करो, जप करने के बाद फिर गुरु वंदना गाओ, फिर ऋषि गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। इसलिए जैसे ही प्रभुपाद ने अपने स्वयं जीवन में निभाए और अपने जीवन को सार्थक किए हैं कृष्ण कृपा स्मृति है कीर्ति मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति, समस्त कीर्तिमान पुरुषों में से सबसे बड़ा कीर्तिमान बस यशस्वी व्यक्ति कौन है जिसकी ख्याति संसार में किस रूप में हुआ, कृष्ण भक्त के रूप में है। प्रभुपाद जी की ख्याति पूरा दुनिया में कृष्ण भक्त के रूप में हुआ, कृष्ण गाय हिज डिवाइन ग्रेस व कृष्ण कृपा स्मृति। ध्रुव और प्रहलाद की जस हम आज पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं भागवत से, किसके लिए, गौरांग महाप्रभु भी बार बार ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र को भी सुनते थे क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना ये ही मानव जीवन का लक्ष्य है, दूसरे कोई लक्ष्य नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त बनना। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको सिखाए कैसे शुद्ध भक्त बन सकते ना, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि को जो गुरु रूप में स्वीकार करके ही उनके निर्देशन को जीवन में जो उतार लेंगे उसी के माध्यम से जीवन सफल हो सकता है, है? गुरु चाहता कि किसको बस ऐसे पुजारी बन के रहो लाइफ टाइम, उसी से भी इसको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर के एक शिष्य थे चंपाहाटी में, अभी तो शरीर त्याग चुके हैं, उन्होंने कम से बस भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने तो कहा था कि चंपाहाटी में तुमको गौर गदाधर की सेवा करते रहना, बस पूरी लाइफ वही सेवा में रहे, लगभग 70 साल से अधिक, तो उसी के माध्यम से वो सिद्धि प्राप्त की। गुरु कहता कि किसी को कोई सेवा करना, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, तुम मैनेजमेंट करते रहो, तुम जैसे जैसे सेवा शिष्यों की स्वभाव के आधार पर गुरु प्रदान करता है, तो उसी सेवा में यदि हम सफलता के साथ सेवा को निभा लेते हैं उसी में ही हमारे जीवन की सफलता प्राप्त होती है, वह भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी को स्मरण रखने के लिए प्रभुपाद ने पूरी सिस्टम दिया है कि सुबह गुरुवाष्टक गा के इसी को याद करो, फिर गुरु वंदना गाओ, फिर याद करो, है श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति है, और कोई दूसरे गति नहीं, दूसरे माध्यम किसी भी उपाय से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कलि युग में तो ऐसा ही सादा मंदसु मंद मत मंद भाग्य उपाद, तो पायण अल्पायु से सभ्य कलो अस्मिन जुगे जना, हम सब अल्पायु से है, मंदमती वाले हैं, अभागे हैं, इस कलि युग के मनुष्य क्या कर सकता है, है? जैसे भागवत के पुस्तक पर ये जो सब धर्म कहा गया विशेष रूप में वानप्रस्थियों के लिए सन्यासियों के लिए जैसे नियम बनाया गया, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हम कहां से सन्यासी ना कहां वानप्रस्थी है, जैसे उनके लिए नियम बताया गया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी को हम अनुसरण कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने जैसे हमको बताया उसी के आधार पर यदि हम गुरु आदेश को पालन करके ही इसी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ में रहकर भी यदि सेवा करते रहेंगे अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, अवश्य हम एक दिन भगवान की धाम को पधारेंगे। इसी प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प के साथ भक्ति में लगे रहेंगे उसी के माध्यम से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे जंगल में जाके कहां घूमेंगे। एक भक्त था वृंदावन में, तो उन्होंने ध्रुव महाराज के जो चरित्र पढ़ा कि 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान को साक्षात दर्शन कर लिए, तो उसने मुझे कहा कि उसमें अखंड कीर्तन में वो भी था, मैं भी कीर्तन करता था, तो कहा कि मुझे भी ऐसे ही सिद्धि चाहिए। किसकी सिद्धि, कैसे सिद्धि? ध्रुव महाराज की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि देखो तपस्या करना है तो पहले तो संसार का सब मोह छोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद बहुत अच्छा ड्रेस था, टेप रिकॉर्डर था, क्या वॉच था, सब कुछ बहुत था, तो बोला ये सब है तो कैसे ये सब लेके जाओगे ना क्या तपस्या करने? बोला नहीं नहीं सब ना, तो सभी भक्तों को बांट दिया, घड़ी टेप रिकॉर्डर जितना ड्रेस था सब बांट दिया, सब बांट बांट के बाद में एक लंगूठा पहना, लंगूठा पहन के एक रात में छोटा सा ही कपड़े धारण रात में ही निकल गया। वो किसको मेरे को बोला मैं जा रहा हूँ, किसको बोलना नहीं, जब तक भगवान को दर्शन नहीं करूंगा वापस नहीं आऊंगा, निकल गया। जाके सीधा गया रामघाट जहां पर बलराम जी ने रास रचे, तो वहां थोड़ा समुना ऐसे ही कई धारा में है और बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टाबू है, वहां पर जंगल जैसे भी है, थोड़ा थोड़ा झाड़ी जैसे, बारिश का सीजन था, तो वहां जाकर झाड़ी के अंदर बैठ गया, बैठ के तपस्या प्रारंभ कर दिया। ध्रुव महाराज की मंत्र जपने लगा, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रैक्टिकल है वो, बैठ के अपना एक दिन गया, दूसरा दिन में तो जोर जोर से बारिश होने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगा, झड़ तूफान आ गया और जमुना में पानी भी, जिस टाबू में बैठकर वो तपस्या ध्यान कर रहा था वो टाबू क्या होने लगा, डूबने लगा, और देखा क्या करेगा, उठ के खड़ा हो गया, देखा कि चारों साइड बहुत मुश्किल से कैसा भी जमुना में ऐसे ऐसे डूबते हुए चढ़ते हुए इस किनारे पहुंच गया, पहुंच के अभी करेगा क्या, सीधा भागते भागते बहुत जोर से भूख लग रहा है यहां से है? बहुत परेशान है पूरे प्रवेश, वहां से भागते भागते रामघाट से सीधे मंदिर पहुंचा, हमारा मंदिर पहुंच गया, रात में लगभग पहुंच गया 2-2.5 बजे मंदिर में आके, देखा चौकीदार को गेट में छोड़ेगा नहीं, कंप्लेट लेगूठा पहना हुआ कौन है वहां घूम के गया, पाचेरी को ऐसे क्रॉस करके जंपिंग करके आ रहा था, चौकीदार देख लिया, डंडा लेकर उसको मारने के लिए भाग रहा था। भागते 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 उस सीढ़ी आकर ब्रह्मचर्य आश्रम में सीधे दर्जे के पास पहुंच गया। बचाओ बचाओ कर रहे हो, चला जो जोर जोर से दौड़ रहे हो। तो मैंने बोला दर्जा खोल दिया, खड़ा है ना गुड़ा पेन की। तो बोला ये चौकीदार छोड़ो, इसको भक्त है, भक्त छोड़। फिर चौकीदार आपस गए। तो कलयुग में यदि ऐसा कोई इमिटेशन करके तपस्या कर ले, ये संभव नहीं है। कलयुग के मनुष्य जितने कहा गया वो शास्त्र में, इस युग में केवल हरेर नाम इव केवलम कलो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्य, तीन बार कहा गया है। इति षोडशकं नामना कलो कल्मषनाशनम नातो परतरंग देविं सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद में कोई उपाय नहीं है। और नहीं, शंकर जी कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ के देख लिया, सब रिसर्च करके देखा, इस कलयुग में कोई दूसरे गति नहीं है। ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र की केवल जप और कीर्तन के माध्यम से कलयुग की मनुष्यों की कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य लोग ने हमको एक दिए है प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको पूर्ण विश्वास है अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालो ना, वो सक्सेस होता है। और जिसको थोड़ा सा संशय है तो क्या होता है, संशय आत्मा विनश्यति। सिर्फ संशय नहीं होना चाहिए, गुरु के वचन में शास्त्र के वचन में हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और नामाश्रय करी था कह सदा, भक्तिनाथ ठाकुर कहते इस कलयुग में नाम आश्रय करके रहो। नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे, 14 ब्रह्मांड के अंदर में और कोई मूल्यवान चीज नहीं है। सिर्फ नाम का आश्रय करो, हरि नाम ही सार, यही साधन यही साध्य। तपन मिश्र को भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बांग्लादेश में प्रचार में गए थे महाप्रभु, और तपन मिश्र बहुत बड़े पंडित था, सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ पड़े में इसको बहुत पांडित्य था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है, कलयुग में जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन रात्रि में हमने उसको कहा कि रात्रि में स्वप्न देखा, तो ब्राह्मण ने स्वप्न में आके कहा कि ये निमाय पंडित पधारे हैं, प्रचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, स्वयं नारायण ही है, तो तुम उनसे जाकर इसका समाधान कर लो। स्वप्न में यदि कोई ब्राह्मण आके बोलता है वो भी स्वयं नारायण ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह गया गौरांग महाप्रभु के पास में, कहा कि मैं ऐसे ही निमाय पंडित, मैं ऐसे ही कल रात को स्वप्न देखा, और वो ब्राह्मण ने तो कहा कि आप स्वयं भगवान हो, तो महाप्रभु कहे विष्णु विष्णु ऐसा मत बोलो, इसको डिक्लेयर मत करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, मैं साधन और साध्य तत्व क्या है, इस कलयुग में साध्य क्या है, साधन क्या है, तो महाप्रभु ने इसको समझाए कि कलयुग में साधन भी हरिनाम और साध्य भी हरिनाम। प्रारंभ से हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, ने आस्ते आस्ते जो अपराध से मुक्त होकर शुद्ध नाम लेने लगते हैं, जिसकी बल पर हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, वही साध्य है। इसलिए साधन और साध्य और साधन तत्व को महाप्रभु ने समझा है तपन मिश्र को। इसके बाद कहे कि तुम जाओ अभी बांग्लादेश छोड़ो, जाके वाराणसी में रहो, मैं आऊंगा तुम्हारे बात में, वाराणसी आऊंगा तो फिर तुम्हारी सहायता कई प्रकार के मेरे जो मेलाओं को प्रकट करूंगा भविष्य में, उसमें तुम भी भाग लोगे, बनारस में जाके रहो। तो इसलिए कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम को आश्रय करना। हमारा यही काम है कि अपराध से मुक्त होकर कैसे नाम ले सके, इसी के लिए प्रयास करना है। कि पर अपराध, हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, अपराध से शून्य होकर जब भगवान के नाम ले पाएंगे, निरपराध है नाम लोइले पाए प्रेमधाम, निरपराध होकर भगवान के नाम लेने से भगवान के चरण में प्रेमधन प्राप्त हो जाते हैं, यही हमारा कर्तव्य है और यही प्रभुपाद जी की शिक्षा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। हमारा जैसे गृहस्थ है, तो ऐसा गृहस्थ और गृह मध्य में क्या अंतर क्या है? गृहस्थों और गृह मेधियों में अंतर क्या है?
गृह मेधी जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, हैं, तो गृहस्थ एक है, वो घर में रह रहा है लेकिन उसके लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, और गृहस्थ है जो कि घर को एक माध्यम बनाता है आत्म साक्षात्कार के लिए। मानस देह गेह जो कि छुमरो और पीलू तोआ पदे नंद किशोर, जो घर को अपना नहीं मानता है, भक्त ठाकुर कहते कि सब आपका है, कृष्ण को सब समर्पण किया, निमित्त बनकर घर में रहकर जो भक्ति में सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है, घर को भी मंदिर समझता है, भगवान का ही समझता है, अपने पत्नी बच्चे सभी को ही कृष्ण की दासी दास दासी मानता है, स्वयं भी कृष्ण के दास है, ऐसे भावना लेकर जो घर में रहकर भी भगवान के चरण में शरणागत गुरु कृष्ण के निर्देशन में केवल गृहस्थ जीवन बिताता है उसको गृहस्थ कहते हैं। उसके लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो गर्भधान संस्कार के माध्यम से केवल एक कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने के लिए ही वो मैथुन में रत रहता, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आज जो सदा गृहस्थ में नहीं तथा कथित गृहस्थ स्वीकार करके इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है इसको ग्रह में भी कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कोई परमहंस का जीवन बिता सकता है भक्ति विनोद ठाकुर के समान, लेकिन जो गृहस्थ में ही रहकर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेगा घर में तो फिर क्या वो ही नर्क के रास्ता बनेगा घर में रह के लिए, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए घर में रहेगा। मनी स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन, धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना जिसके लक्ष्य है तो उसको ग्रह मेधि कहते हैं। जो घर में रहकर भी भगवान की भक्ति करना उसके जीवन के लक्ष्य है तो गृहस्थ है।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे अपराध का शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे
तो वो तो आप डेली बोल रहे हो, दशम अपराध कहीं फिर कहते ना, जप के समय में अन्य मनस्क रहना व ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, ये भी एक अपराध है। ये समस्त अपराधों की जड़ है। भक्तिमय ठाकुर हरिनाम चिंतामणि कहते कि ये सारे अपराध यहीं से शुरुआत होती है। कहां से? ध्यान पूर्वक जप नहीं करे, अभी तो माया इसलिए इन्वेंट कर दिया मोबाइल, जप करते रहेगा सामने क्या रहेगा? मोबाइल है, तो जप में कैसे स्थिरता रहेगा? वो तो मोबाइल में कहीं फोन आया बस उठा चल निकल गए बस है। ये सभी अपराध की जड़ है, यहीं से शुरू होती है अन्य मनस्क होकर जप करने से। सावधानी से जप करने से आस्ते आस्ते अपराध से बच सकते हैं। जब पूरे सावधानी से जो चैंटिंग कर रहे हैं इसको सुनना, जो जप रहे हैं तो इसको सुनना, उस समय मन कहीं नहीं जाना चाहिए। जानना चाहिए कि दुनिया में और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, है? तो इसलिए जप के समय में अन्य मनस्क नहीं रहना, सिर्फ जपना और सुनना बस। ठीक है, ऐसे अपराध शुरुआत होते अन्य मनस्क होकर नाम जपने से। हाँ ठीक है, इसलिए भक्त विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद, इसे बचना चाहिए, पांच अनर्थ है। लय स्वत का जप्पा करते करते क्या करेगा? सो गए बस। तमगुण के प्रभाव से, तमगुण जिसके पास है तो जप्पा करेगा हरे कृष्ण सो गए। लय विक्षेप, रजगुण के कारण विक्षेप होता है, जपा करते करते वो बैठ नहीं सकता, कितने इमरजेंसी और कितनी काम है, खड़ा हो जाएगा फिर भाग जाएगा, वो इधर उधर ही बहुत कहें उससे बात करने से वो कितने काम है भाग जाएगा, वो माइंड स्थिर नहीं रख सकता है। विक्षेप, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति, कोई संकल्प ले लिया मैं बैठ के जपा करूंगा, सोलमाला कंप्लीट नहीं हुआ तो स्थान से उठूंगा नहीं, लेकिन पूर्व से प्रारब्ध से रजगुण के प्राधान्य होने के कारण वो जपा करते तो रहेगा हरे कृष्ण, जब उठा नहीं, बाहर रूप से लोग देखते हैं पूरा बैठकर जप एकदम ध्यान से कर रहा है लेकिन मन अपने काम कर रहा है, माइंड घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, माइंड अपने काम कर रहा है। यह प्रतिपत्ति प्रयास करने पर भी फिर भी मन को संयमित नहीं कर पाता, कषाय, कषाय करता रजोगुण के प्रभाव से अहंग भाव महंग मामेती, इसके बाद तो उसको कोई सेवा दे दिया गया कि तुम ही लीडर हो है? कोई भी सेवा दे दिया, फिर उसके मैंने अहंकार, मैं लीडर हूं, जितने लोग हैं सो मेरे सुनेंगे, जो मेरे नहीं सुनता तो इसको निकाल ही दूंगा है? ऐसे भावना अहंकार होने के कारण मन में निताय पद पासरिया, अहंकारे मत्त हया निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी माने, ऐसे व्यक्ति भी स्थिर चित्त में बैठकर जप नहीं कर सकता है। अंत में कहते कि रसास्वाद, रसास्वाद करता तो भौतिक मैंने आध्यात्मिक रस नहीं, इसको भौतिक रस के आस्वादन हो रहा है रजोगुण के प्रभाव से है। उसको उधर कीर्तन की कोई उसका लीडिंग करने का नहीं है, लेकिन बोलेगा नहीं आज मैं लीडिंग करूंगा, उधर जिसका लीडिंग करने का है उसका आगे बोलेगा कि भाई तुम मेरे जो टर्न आएगा ना तो तीन टर्न कर लेना, लेकिन आज के मैं गाऊंगा, मेरे को छोड़ दे आज। क्योंकि कीर्तन किस लिए हम करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या कि उसका कोई आदमी आया है उसको दिखाएगा कितने अच्छा गाता हूं, कितने अच्छा मृदंग बजाता हूं, उसको भौतिक रस के आस्वादन हो रहा है। हम जानना चाहिए कि हम जो कीर्तन कर रहे हैं वो कीर्तन किसके लिए है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नहीं ये सोचते कि नहीं मैं गाता हूं तो सब लोग मुझे देख रहे कि नहीं, अच्छा गा रहा हूं कि नहीं, और गाने के बाद दो चार लोग पूछेगा आ ठीक रहा ना कीर्तन, तो फिर ऐसे जो कीर्तन है बहुत बहुत आर्टिस्टिकली बजाएगा क्या मृदंग अच्छा से। तो प्रभुपाद जी जो बताते ऐसे ही जो कलाकारी दिखाता था तुरंत आगे बंद कराते थे कीर्तन है, सिंपल बजाओ, सिंपल गाओ और सिंपल बजाओ बस। तो इसलिए रसास्वाद देख रहा है कि बाह्य रूप से हरिनाम कर रहा है लेकिन वो रसास्वादन कर रहा है, कौन सा रस है? इंद्रिय तृप्ति आस्वाद, इंद्रिय तृप्ति कर रहा, भौतिक रस के आस्वादन कर रहा है, उसको कैसे भक्ति प्राप्त हो? ये सब अनर्थ है, जब तक रहेंगे हम शुद्ध नाम कैसे ले सकते हैं? कम से कम हम साधु संघ में बैठकर जप करना और अन्यमनस्क नहीं होना, सावधान से बैठकर जप प्रतिदिन करेंगे। जानना चाहिए कि जप किस लिए करते हैं? यज्ञानां जप यज्ञस्मिन, भगवान कहते हैं कि जितनी प्रकार की मुझे प्रसन्न करने की विधि है उनमें से मैं जप यज्ञ हूं। जो भगवान के नाम को सावधानी से जप करता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सदगुरु यही कहा हमको, दीक्षा देकर कहा कि जल्दी जितनी भी आदेश है गुरु का, सबसे पहला आदेश है ध्यान पूर्वक सोलमाला कम से कम जप कर लेना, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
लेकिन जो जप हम कभी कभी हम सोचते हैं हम मस्त बैठ के जप करते हैं, लेकिन मन हमारा लंदन अफ्रीका घूमते रहता है, देखने को हम बैठ के बढ़िया सोलामाला चल रहा है, लेकिन हम ऐसे कैसे ये तो दिखाने के लिए हम जप कर रहे हैं, मन तो इधर तो घूमता है, तो ऐसे रुचि कब उत्पन्न होगा? जैसे कि मन इच्छा होना चाहिए ना कि मैं अच्छा, इच्छा होने से अच्छा जप करेगा, तो इच्छा कैसे प्रकट होगा?
इच्छा प्रकट होगा क्यों नहीं होगा? सत्संग है, साधु संघ में इच्छा प्रकट होता है। यदि वो मन इधर उधर घूम रहा है, लेकिन ये मन एक काली नाग के समान, कैसे काली नाग के समान, काली दह में रहता था कौन? काली नाग, पहले वो अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता था, परिवार के साथ पड़ा रहा, और जब आप कृष्ण, आप कृष्ण जब जंपिंग कर दिए तो फिर क्या हुआ? पूरा शक्ति के साथ पणा उठाकर फाइटिंग करने आया। तो कई जन्म जन्मांतर से हम सब जो करके आए हैं, तो वो सब जो हमारा मन में जो स्मृति पड़ा हुआ है मन में, तो मन तो अपने सब इंद्रियों के राजा, वो अनुभव तो फिर वो किसी ना किसी कारण भक्त संघ में आकर जो हरे कृष्ण कहना शुरू कर दिया, तो फिर उसे बाधा देगा कौन? मन, बोला अरे ये भी मेरे बात नहीं सुनेगा, तो इसलिए पूरा शक्ति संचय करके सब पूरा शक्ति के साथ प्रयास करेगा हमारे मन को कृष्ण में नहीं लगाने देने के लिए। लेकिन फिर भी यदि हम कृष्ण को अनुसरण करेंगे, बार बार फिर जोर जोर से नाम लेंगे, नींद आता तो तुरंत ही क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कुछ समय संघर्ष चलता है, लेकिन जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार है, कृष्ण और कृष्णामंतर नहीं है। यदि हम पूरी सिंसियरली प्रयास करेंगे, आस्ते 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 मन संयमित हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन संयमित हो जाता है। ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न आपका क्या था? यहां माइक दो प्रश्न के।
हरे कृष्ण महाराज जी, बता रहे थे कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए नहीं तो अपराध होता है, दसवां अपराध का जो उदाहरण दिया आपने। और एक जगह कभी कभी ऐसा सुनना जाता है कि बताया जाता है कि चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में, कि आप जैसा भी हरि नाम जप करो आपका कल्याण होगा। अगर खाते सोते जो श्लोक है ना,
ठीक से आस्ते बोला, इतने जल्द
खाते सोते वो जो श्लोक है ना, आप हरि नाम को जैसा भी जप करोगे आपका कल्याण होगा। तो इसमें
नाम अक्षर बहिर है, नाम नहीं है,
तो इसमें अपराध का सवाल किधर रहता है?
निरंतर नाम लेने से फिर आस्ते आस्ते अपराध से बच जाओगे। निरंतर ले पाओगे तो बड़ा भाग्यवान हो, 24 घंटे जब नाम ले पाओगे फिर आप अपराध नहीं कर पाओगे। नाम ले पाओते 16 महाराज अपना मुश्किल हो जाता है, खाईते सुईते
वही वही बात महाराज जी,
24 घंटे ले पाओगे तो फिर आप अपराध से मुक्त हो। अब नहीं ले पाओगे ना, 16 महाराज के बाद पास हो गया तो इसलिए अपराध होता है। आप जब हरिदास ठाकुर तरफ 24 घंटे नाम लोगे तो फिर अपराध नहीं होगा, हम नहीं ले पाए, यही प्रमाण है।
तो ये जो ये जो श्लोक जो बताया गया है, खाते सोते जैसा भी जब करो
तो
आपको कल्याण होगा,
ले पाओगे तो ना 24 घंटे लेना नाम, विधि नहीं यार, महाप्रभु कोई विधि नहीं है, खाईते सुईते सब समय नाम लो, विधि नहीं यार, कोई विधि नहीं, सब समय नाम लो लेकिन छोड़ना नहीं बीच में है? नाम हरे कृष्ण और आ गया, अरे अरे मेरा दोस्त आ गया, बस गया, छोड़ दिया है, है? भगवान से भी और कोई बड़ा दोस्त आपका, जो कह रहे कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, कली काले नाम रूपे कृष्ण बता, जब भगवान के संग कर रहे हो फिर दूसरा संग भाग गए फल छोड़ के माया के संग करने तो क्या होगा है? नाम लेने कहा कि नाम आप सब समय ले पाओगे तो ठीक है, अब नहीं ले पाओगे ना है? खाने का टाइम और कई चिंतन, खाने का टाइम और कई चिंतन आता है, खाने का टाइम कहां से नाम ले पाओगे, सोने का टाइम में है? फिर आपके कई चिंतन आ जाएगा, सोने के टाइम भगवान का स्मरण कहां कर पाओगे है? इंद्रिय तृप्ति की भावना में रहोगे तो फिर दूसरे प्रकार की चिंतन आएगा है? आसान नहीं है, इसलिए भक्तिवान ठाकुर कहते कि नामाक्षर वही रहे, नाम नहीं है, यदि आप निरंतर ले पाओगे तो कृष्ण नाम, फिर अपराध करने के चांस नहीं रहेगा, निरंतर नहीं ले पाओगे ना, यही तो प्रमाण है कि तुम अपराध करते हो, इसलिए नाम उच्चारण नहीं हो रहे मुख से, जो अत्यधिक पापी है उसके मुख से नाम उच्चारण नहीं होते। दशरथ रत्नाकर ने प्रयास करने पर भी राम नहीं कर पाया है? लेकिन हम जब अपराध कर ऐसे निरंतर नाम नहीं ले पा रहे, वो इसीलिए तो सारे समस्या, 24 घंटे नाम लो फिर आप अपराध नहीं कर पाओगे।
हाँ महाराज, कुछ भक्त ऐसे है कि वो जब जप करते दोनों कान बंद कर देते हैं, ईयर प्लग डाल देते पूरा और उसके बाद जप करते हैं, तो ऐसा जप करना चाहिए या क्योंकि ऐसा करने से भी कुछ सुनाई नहीं देती है, तो कैसा हमें जप करना चाहिए, कान बंद करके या कान
बाहर का कुछ नहीं सुनना, केवल जप का ध्वनि सुनना, ठीक है, इसमें क्या है?
अच्छा
क्या अपना बाहर का कुछ नहीं सुनना, उसको केवल कान में लगाने बाहर का आवाज नहीं आएगा, तो अपना सुन रहा है, केवल जो उच्चारण कर रहा है उसको सुन रहा है, ठीक है। ओके हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।